गाथा में आप सुन रहे हैं पूजंक वोब्रिश की लिखी कहानी एनकाउंटर। लीजिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी में अब तक आपने सुना, एक लड़की अपना पीछा करते हुए आदमी से बचकर तेजी से भागती चली जा रही थी। इसी बीच पीछा करने वाले व्यक्ति का एक और साथी वहां आ जाता है और फिर दोनों मिलकर उस लड़की के पीछे पीछे भागते हैं। उन दोनों की नज़रों से बचती हुई वो लड़की एक बिल्डिंग के फ्लैट में घुसती है, जहां पर एक बड़े से कमरे में एक व्यक्ति बैठा होता है। उन दोनों में बातें होती हैं। अब आगे चैंपलेन खामोशी से पर्दे की झिरी से बाहर देखता रहा। लड़की ने दीवार में बनी हुई अलमारी को आहिस्ता से खोला और उसके पल्ले की आड़ लेकर सिगरेट जलाई। उसने चंद गहरे कश लिए और फिर उसका जलता हुआ सिरा हथेली में छिपा लिया और आहिस्ता से बोली, बेतहाशा भागने की वजह से सारा सामान भी गिर गया, मैं एक भी चीज नहीं बचा सकी। अब उन दुकानों तक दोबारा जा भी नहीं सकती, वो मुझे देखते ही पहचान लेंगे। लड़की फर्श पर टहलते टहलते रुक गई और कान लगाकर सैड म्यूजिक सुनने लगी। ये म्यूजिक ऊपर की मंजिल से आ रही थी, वहां किसी का निधन हो गया था। ये लोग अब तक लाश लेकर नहीं गए, लड़की ने चुपते हुए लहजे में कहा। ये दर्दनाक म्यूजिक मुझे पागल कर देगी चैन। मरने वाले की सही जगह कब्रिस्तान होती है, उसे इतनी देर घर में रखकर शोक मनाने से क्या फायदा। चैंप ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़ी खामोशी से बाहर का जायजा लेता रहा। वो इतना शांत था कि ऐसा लगता था कि इस दौरान उसने एक बार भी सांस न ली हो। कुछ देर बाद उसने कहा, तो तुम उन्हें धोखा देने में कामयाब हो गई। उसकी आवाज तल्ख थी लेकिन उसमें मोहब्बत भी जज्ब थी। लड़की टहलते टहलते रुक गई। वो दबे पांव चैंपलेन के पास आई। सिगरेट का जलता हुआ सिरा अब भी उसकी हथेली में छिपा हुआ था। वो चैंप के बगल में खड़ी होकर पर्दे की झिरी से बाहर के हालात समझने की कोशिश करने लगी। उस इमारत के दूसरी तरफ तीन आदमी खड़े आपस में सलाह कर रहे थे। फिर जल्द ही वो तीनों अलग हो गए और कुछ फासला देकर सामने के मकानात के पास अंधेरे में खड़े हो गए। बावर्दी और असलहों से लैस सिपाही आसपास की दीवारों से चिपके हुए खड़े थे। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, चैंपलेन ने नरमी से लड़की का हाथ दबाते हुए कहा। लड़की ने उसकी आस्तीन पकड़कर खींचते हुए फुसफुसाहट भरी आवाज में कहा, अभी वक्त है डार्लिंग, भाग निकलो खुली फिजा में, ये तो चूहेदान है, यहां हम बुरी तरह फंस जाएंगे।
बहुत देर हो गई है माय डियर, कोलंबिया का हर पुलिस वाला इसी इलाके में मौजूद होगा, चैंप ने कहा। उन्होंने देखा कि एक पुरुष और एक औरत बाहों में बाहें डाले गली में दाखिल हुए। किसी तरफ से अचानक एक साया नजर आया और वो चंद कदम इस जोड़े के साथ चलता रहा, फिर उससे अलग होकर वापस अंधेरे में गुम हो गया। जोड़ा मुड़ा और तेज कदम उठाता हुआ वापस उसी तरफ चला गया जहां से आया था। वो जोड़ा बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था।
नाकाबंदी हो रही है, चैंप ने कहा।
हम बगल वाले दरवाजे से भाग सकते हैं, लड़की ने धीमी आवाज में कहा।
तुम पुलिस को इतना बेवकूफ क्यों समझती हो जान? यकीन मानो, एक फरलांग तक हर गली और हर बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस मौजूद होगी।
अचानक वो खिड़की से हटकर पीछे आ गया। अंधेरे में उसकी नीली शर्ट काली होकर नजरों से गायब हो गई।
ये लोग मुझे जिंदा तो हरगिज नहीं पकड़ सकते, चैंप ने शांत स्वर में कहा।
कमरे में शांति छा गई। ऊपर से आ रही दर्द भरी आवाज लड़की को बेचैन कर रही थी। चैंप ने सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा और हंसी भरे लहजे में कहा,
मुर्दे सर, अब आप एक तरफ हटकर जगह खाली कर दीजिए, दो मुर्दे और आने वाले हैं। लड़की ने इस तरह से सिसकारी भरी जैसे सब्जी काटते वक्त चाकू से उसकी उंगली कट गई हो। गली के मकानात की रोशनियां गुल होने लगीं। चैंप पर्दे के करीब आकर बाहर देखने लगा। अंधेरे में डूबे एक मकान से कोई औरत तोते का पिंजरा उठाए बाहर निकली। उसके पीछे एक बावर्दी सिपाही था। उसने औरत को मकान से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। औरत पिंजरा संभाले और तेज तेज कदम उठाते हुए गली से निकल गई।
जान, अब मार धार से भरपूर फिल्म शुरू होने वाली है, देखोगी?
चैंप ने हंसी भरे लहजे में लड़की से कहा। तभी किसी ने ऊपर के फ्लैट की घंटी बजाई। इसके तुरंत बाद ही ऊपर के फ्लैट से आने वाला गमगीन संगीत बंद हो गया। वो दोनों कान लगाकर ऊपर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगे। कुछ पलों के बाद ही उन्हें बहुत सारे कदमों की धमक सुनाई दी। झांक कर देखो, क्या पुलिस वाले इस इमारत को खाली करवा रहे हैं? चैंप ने लड़की से कहा। लड़की दबे पांव दरवाजे की तरफ गई। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर हल्की सी झीरी पैदा की और एक आंख लगाकर बाहर झांकने लगी। फिर उसने बड़े एहतियात से दरवाजे को पहले की ही तरह मजबूती से बंद किया और फिर वापस आकर चैंप से कहने लगी, हाँ सब नीचे जा रहे हैं। अभी लड़की की बात खत्म ही हुई थी कि तभी अचानक लाउडस्पीकर की तेज आवाज गूंजी,
सब लोग बाहर आ जाएं, ये पुलिस का हुक्म है। तमाम इमारतों में रहने वालों से गुजारिश है कि वो बिना देर किए गली में आ जाएं। ये पुलिस का हुक्म है, आप लोग कानून का पालन करें, ये आपका फर्ज है।
पुलिस सारा इलाका खाली करा रही है, लड़की ने कहा। हाँ, चैंप ने कहा, इसका मतलब है कि वो हमले की शुरुआत गैस से करेंगे।
चैंप, चैंप,
लड़की ने अनुरोध करते हुए कहा,
यहां से भाग चलो डार्लिंग, कुछ करो, अपने असलहों के भंडार पर भरोसा मत करो। तुम्हारा मुकाबला चंद लोगों से नहीं पूरी हुकूमत से है। तुम असलहे के बलबूते पर कब तक मुकाबला करोगे? सारे मकान खाली हो गए तो हम यहां से भाग भी नहीं सकेंगे।
चैंपलेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आहिस्ता से लड़की की पीठ सहलाई। सीढ़ियों पर नीचे जाने वाले लोगों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। उतरने वाले बहुत जल्दी में थे। पुलिस का लाउडस्पीकर चीख चीख कर अब भी लोगों से मकान खाली करने के लिए कह रहा था। चैंपलेन की कम उम्र बीवी भागते हुए कमरे से निकल गई। चंद पलों के बाद वो वापस अंदर आ गई। चैंप खिड़की के करीब झुका हुआ गली का दृश्य देख रहा था। करीबी इमारतों से भी लोग बाहर निकल रहे थे। इमारत के गेट पर खड़े हुए पुलिस वाले उन्हें चेक कर रहे थे और फिर उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे।
चैंप डार्लिंग, ऊपर की मंजिल खाली हो चुकी है, चलो छत पर चलो, लड़की ने कहा।
क्या तुम उन्हें बिल्कुल गधा समझती हो?
चैंप ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया और खिड़की से बाहर झांकने लगा।
मगर इस चूहेदान में मरने से क्या फायदा?
मरना ही है तो हम हर हाल में उनका मुकाबला करते हुए क्यों न मरें?
ऊपर की सीढ़ियां बिल्कुल खाली हैं, हम ऊपर चढ़ जाते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो वापस आ जाएंगे। यहां से तो निकलो डियर,
लड़की चैंप का हाथ पकड़कर घसीटने लगी। अच्छा, चैंपलेन ने पलट कर कहा, तुम ऊपर पहुंचकर पोजीशन संभालो, मैं यहां से कार्रवाई शुरू करता हूं, जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले मैं उस सादा लिबास पुलिस वाले को निशाना बनाता हूं, देखो। उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया। लड़की ने अपने पति चैंपलेन के नीचे झुककर बाहर देखने की कोशिश की। उसे वो पुलिस वाला नजर आ गया। वो खिड़की के सामने एक मकान के दरवाजे के पास अंधेरे में छुपा खड़ा था। वो एक हाथ से किसी को इशारा कर रहा था। चैंपलेन ने ना तो खिड़की के पर्दे हटाए और ना ही चौखट का सहारा लिया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उससे वो सामने खड़े सादा वर्दी पुलिस वाले का निशाना ले रहा था।
अपनी आंखें बचाओ डियर, उसने लड़की से कहा।
लड़की ने तुरंत ही अपनी आंखों को हथेली से ढक लिया। रिवॉल्वर की नाल से एक शोला निकला। इससे उन दोनों के चेहरे कुछ पल के लिए रोशन हो गए। खिड़की का शीशा बारिश के पत्रों की तरह टूटकर बाहर गिरने लगे। पर्दा एक बार जोर से हिला। अब उसमें एक बड़ा सा गोल छेद नजर आने लगा। सामने खड़ा सादा वर्दी पुलिस वाला चिड़ियों से लुढ़कते हुए गली में आकर गिरा। कुछ ही पलों में वो बेहरकत हो गया। दूसरे ही पल लंबी लकीरों वाले शोले चैंप की खिड़की की तरफ लपकने लगे। चंद सेकंड में खिड़की के शीशे का एक टुकड़ा भी बाकी न रहा। चैंप उछलकर पीछे हटा था। वो अब कमरे के फर्श पर औंधे पड़ा था। उसके हाथ में अब भी रिवॉल्वर था। दूसरे हाथ से उसने लड़की का हाथ पकड़ रखा था। खिड़की के पर्दे बहुत जोर से फड़फड़ा रहे थे। उनमें तेजी से सुराख बढ़ते जा रहे थे। सिर्फ कुछ सेकंड में ही वहां पर्दे की जगह चीथड़े झूल रहे थे। अचानक कहीं से सर्च लाइट की रोशनी उभरी और कमरा जगमगा उठा। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, ये सुनिए अगले भाग में। सुनते रहिए गाथा रूह वही रूप नया। गाथा में आप सुन रहे थे कोजंक वोबरिश की लिखी कहानी एनकाउंटर। आपने सुना इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी के संपादक कुमार रहमान। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।